परमाणु के अस्तित्व में क्या प्रमाण है, किस तरह का अनुमान प्रमाण है, इसकी चर्चा पूर्व पाठ में की गई कि त्रेणुक जो है उसमें वह अपने स्वल्प परिमाण वाले द्व्यणुक से आरब्ध है, और द्व्यणुक जो है अपने से स्वल्प परिमाण वाले परमाणु से आरब्ध है, और वो ऐसा है कि त्रेणुक जो है कार्य द्रव्य है, और जो कार्य द्रव्य होता है वह अपने से अल्प परिमाण वाले द्रव्य से आरब्ध होता है, और इसी क्रम से इन्होंने परमाणु तक की सिद्धि की और कह करके बताया कि यह जो द्व्यणुकारंभक है माने द्व्यणुक को बनाने वाला है वही परमाणु है, और वह परमाणु अनारब्ध होता है माने परमाणु बाकी सबको बनाता है लेकिन परमाणु को कोई बनाता नहीं है, परमाणु जो है वह नित्य है। इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है कि ननु कार्य द्रव्य आरंभकस्य कार्य द्रव्यत्व अव्यभिचारात्, अर्थात जो कार्य द्रव्य का आरंभक होता है, कार्य द्रव्य हो गया घटपट आदि, उसका जो आरंभक होगा माने उसका जो आरंभ करने वाला होगा, उसका जो बनाने वाला होगा वह कार्य द्रव्य ही हो सकता है, कार्य द्रव्य को बनाने वाला कार्य द्रव्य ही हो सकता है, कार्य द्रव्य के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा अव्यभिचारात इस तरह का व्यभिचार कहीं दिखाई नहीं देता है। तात्पर्य ये है कि कार्य द्रव्य का आरंभक कार्य द्रव्य ही होता है, कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया कि जो कार्य द्रव्य न हो और कार्य द्रव्य का आरंभक हो। तो इस तरह से कार्याद्रव्यारंभकस्य कार्य द्रव्यत्व अव्यभिचारात, व्यभिचार माने अभाव, अव्यभिचार माने व्यभिचार माने अभाव, अव्यभिचार मतलब व्यभिचार का अभाव। तो कार्य द्रव्य का जो आरंभक है वह हमेशा ही उसमें कार्य द्रव्यत्व ही रहता है, तो फिर यहाँ पर परमाणु जो है वह कार्य द्रव्य का आरंभक है माने द्व्यणुक का आरंभक है, तो जब द्व्यणुक कार्य द्रव्य का आरंभक परमाणु है तो परमाणु को भी कार्य द्रव्य ही होना चाहिए, उसको भी आरब्ध ही होना चाहिए। आपने कैसे कहा कि वह परमाणु जो है वह अनारब्ध है अर्थात नित्य है, क्योंकि एक सामान्य सा नियम है कि कार्य द्रव्य का आरंभक कार्य द्रव्य ही होता है, तो द्व्यणुक आदि जो है वह कार्य द्रव्य है, उसका आरंभक परमाणु है, तो परमाणु को भी कार्य द्रव्य ही होना चाहिए माने अनित्य ही होना चाहिए, तो वह अगर नित्य माना जाएगा तो कार्य द्रव्य का वह आरंभक नहीं बन पाएगा, ये प्रश्न का आशय है। इस पर समाधान में कहते हैं उच्यते अनंत कार्य परंपरा दोष प्रसंगात, कहा कि कहीं न कहीं आपको तो विराम लेना ही होगा ना, अगर आप विराम नहीं लेंगे तो अनंत कार्य की परंपरा हो जाएगी। अब जैसे देखिए कि त्रेणुक का आरंभक कौन होगा, द्व्यणुक जो उससे छोटा है, द्व्यणुक का आरंभक कौन होगा तो जो उससे छोटा है परमाणु, अब परमाणु का भी अगर आप आरंभक मानेंगे तो किसी को मान लिया आपने, फिर उसका भी आरंभक मानना पड़ेगा, फिर उसका भी आरंभक मानना पड़ेगा, इस तरह से अनंत आरंभक मानना पड़ जाएगा, कहीं पर विश्रांति नहीं होगी और इस तरह से अव्यवस्था हो जाएगी, निश्चित नहीं हो पाएगा, इसीलिए कहीं न कहीं आपको विराम मानना है, वह विराम जो है वह आप परमाणु पर मान लीजिए, ये मानिए कि परमाणु के बाद उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसका छोटा अंश नहीं हो सकता। अब ऐसा है कि आज का जो विज्ञान है वह परमाणु के भी कई टुकड़े कर देता है, और इस तरह से हमारे पर ऊपर आक्षेप होता है कि आपने सबसे छोटी इकाई को परमाणु माना, हमने तो उस परमाणु को भी जो है ना कई टुकड़े कर दिए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और अब उसके भी टुकड़े सब की बात सुनने में आती है, तो ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र का अभिप्राय ये है कि जो सबसे छोटा टुकड़ा है जिसके बाद कि उसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसी टुकड़े का नाम है परमाणु, और वही जो परमाणु है वह द्व्यणुक का आरंभक होता है, तो और वह जो परमाणु है वह अनारब्ध होता है माने उसका आरंभक कोई नहीं होता, वह नित्य होता है। तो अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे परमाणु पर जा करके, तो क्या होगा, अनंत कार्य परंपरा का दोष प्रसंग होगा। तो अनंत कार्य परंपरा दोष न होवे, इसीलिए परमाणु को आपको कार्य द्रव्य का आरंभक तो मानना पड़ेगा, लेकिन कार्य उसमें कार्य द्रव्यत्व तो नहीं मानना है, उसमें नित्य द्रव्यत्व ही मानना चाहिए। अगर उसमें भी कार्य द्रव्यत्व मानेंगे परमाणु में, तो अनंत कार्य परंपरा का दोष आएगा। अब इसको समझने समझाने के लिए बहुत बड़ा बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब देखिए, जैसे एक मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, और एक सरसप है। सरसप समझते हैं ना, सरसों का दाना, वो जो पीला पीला होता है, सरसों का जो तेल होता है। तो सुमेरु पर्वत है और सरसप है। अब सुमेरु पर्वत और सरसप एक जैसा होने लगेगा अगर आप परमाणु को अनारब्ध नहीं मानेंगे, परमाणु को नित्य नहीं मानेंगे, तो मेरु और सरसप दोनों का परिमाण तुल्य होने लगेगा। कैसे, तो देखिए, सुमेरु है, सुमेरु पर्वत बना, वो बना होगा अपने से छोटे वाले अंश से, वह जो छोटा अंश है वो अपने वाले छोटे अंश से बना होगा, वह जो छोटा अंश है फिर अपने से छोटे अंश से बना होगा, इस तरह से अपने से छोटे बना होगा ऐसे ही होते 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 कभी इसका अंत नहीं होगा। ऐसे ही अब एक सरसप को ले लीजिए, माने सरसों के दाने को ले लीजिए, वह जो है अपने से छोटे अंश से बना होगा, वह भी जो छोटा अंश है वो अपने छोटे अंश से बना होगा, वह भी जो छोटा अंश है वो अपने से छोटे से अंश से बना होगा, इस तरह से कभी विराम होगा ही नहीं, वो अनंत हो जाएगा। तो जैसे सुमेरु पर्वत में अनंत द्रव्य कार्य द्रव्य की परंपरा होती है, उसी तरह से एक सरसप में भी जो है अनंत कार्य द्रव्य की परंपरा होगी, दोनों में तुल्य परिमाणत्व तो प्रसंग आ जाएगा। इसीलिए ये मानना ही पड़ेगा कि परमाणु जो है वह कार्य द्रव्य का आरंभक तो होता है, परंतु स्वयं कार्य द्रव्य नहीं होता, वह स्वयं में नित्य द्रव्य होता है। वही आगे कहा, तथा च सति अनंत द्रव्य आरब्धत्व अविशेषेण, अनंत द्रव्य से आरब्ध जो है सुमेरु पर्वत भी है और सरसप भी है, दोनों में अविशेष है ना, कोई विशेष भेद नहीं है, फिर उसमें दोनों में तुल्य परिमाणत्व का प्रसंग आ जाएगा। ये कहा जाने लगेगा कि अरे सरसप और सुमेरु पर्वत जो है ये तो तुल्य परिमाण वाला है, एक ही जैसा परिमाण है। क्यों? क्योंकि उसमें भी अनंत द्रव्य आरब्धत्व है, मेरु में और सरसप में भी अनंत द्रव्य आरब्धत्व है। तस्मात अनारब्ध एव परमाणु, इसीलिए परमाणु को अनारब्ध ही मानना चाहिए। तो ये जो सवाल किया गया था कि कार्य द्रव्य का आरंभक कार्य द्रव्य ही होता है, नित्य द्रव्य नहीं होता, उसका खंडन किया इस तरह से कि अनंत कार्य परंपरा दोष प्रसंग होने के कारण परमाणु को जो है नित्य द्रव्य ही मानना चाहिए, अनारब्ध ही मानना चाहिए। अब इसी तरह से अन्य शंकाएं भी यहाँ की जा रही हैं, वो ये है कि द्वनुकम तु द्वाभ्याम एवा, कहा कि ये जो द्वनुक की सृष्टि आपने बताई कि दो परमाणुओं के संयोग से द्वनुक की सृष्टि होती है, तो अब इसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं कि दो ही परमाणु क्यों हैं, एक परमाणु से क्यों नहीं, या तीन परमाणु से क्यों नहीं, चार परमाणु से क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, दो ही परमाणु से द्वनुक की सृष्टि क्यों मानी जाती है। तो उसका जवाब देते हैं कि द्वनुकम तु द्वाभ्याम एवा, कि द्वनुक की सृष्टि जो है वह द्वाभ्याम परिमाणाभ्याम परमाणुभ्याम एवा, दो ही परमाणुओं से उसकी सृष्टि होती है। द्वाभ्याम एवा परमाणुभ्याम आरभ्यते, दो ही परमाणुओं से द्वनुक का आरंभ होता है, एक से आरंभ नहीं हो सकता। वही कहा एकस्य अनारंभकत्वात्, जो एक परमाणु है वह किसी का आरंभक नहीं हो सकता, एक से जो है दूसरे की सृष्टि नहीं हो सकती, सृष्टि के लिए दो का कम से कम होना जो है वह जरूरी, क्योंकि सृष्टि की प्रक्रिया में क्या बताया कि संयोग होने से सृष्टि होती है ना, तो संयोग जो है एक में हो सकता है क्या? संयोग होने के लिए सबसे जो छोटी इकाई है, सबसे जो कम हो है वह क्या है? दो है, दो रहेगा तो उसमें संयोग हो सकता है। इसलिए कहा कि एक परमाणु से सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें तो संयोग संभव नहीं है, तो इसलिए कहा एकस्य अनारंभकत्वात्, एक जो परमाणु है वह अनारंभक है, वह किसी का आरंभक नहीं है। अब इसका तो जवाब दे दिया कि एक परमाणु से ही क्यों नहीं सृष्टि मानते हैं दोनों की। अब दूसरा जो था कि तीन चार परमाणुओं से क्यों नहीं मानते हैं सृष्टि, क्योंकि तीन चार परमाणुओं में तो संयोग हो सकता, तो उसका जवाब दिया कि त्रियादि कल्पनायाम प्रमाणाभावात्, कहा कि तीन चार परमाणुओं से द्वेणु की उत्पत्ति जो मानेंगे उसमें कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि अगर आप तीन चार परमाणुओं से सृष्टि मानेंगे तो आप देखिए कि परमाणु क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, पर वह दृष्टिगोचर नहीं होता, वह दिखाई नहीं देता। लेकिन आप देखिए कि जब घड़ा जब टूटता है तो घड़ा टूटता है तो बिखर जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो टुकड़ा दिखाई देता है ना। तो अगर हम परमाणु से सृष्टि मानेंगे तो क्या होगा, घड़ा टूटने पर वो परमाणुओं में बिखरेगा, फिर वो दिखना नहीं चाहिए, लेकिन वो उसके टुकड़े दिखते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु से नहीं बनता है, वह जो है द्वेणुक से बनता है, त्रिणुक से बनता है चतुर्णुक। तो इसलिए कहा कि प्रमाणाभावात, मान त्रियादि कल्पनायाम प्रमाणाभावात, कि तीन चार परमाणुओं से द्वेणुक बनता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। कैसे, वो मैंने बता दिया कि जब घड़ा टूटता है या कपड़े जब फटते हैं तो उसके टुकड़े दिखाई देते हैं। अगर हम तीन परमाणुओं से सृष्टि माने, द्वेणुक से सृष्टि नहीं माने, तो क्या होगा कि वहाँ पर वो टुकड़े नहीं दिखेंगे, वो अप्रत्यक्ष होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से द्वेणुक से ही सृष्टि माननी पड़ेगी। फिर प्रश्न करते हैं कि ऐसा है कि त्रिणुक की उत्पत्ति आप मानते हैं कैसे, त्रिभी द्वेणुक, तीन द्वेणुक से आप त्रिणुक की उत्पत्ति मानते हैं, वो क्यों, एक ही द्वेणुक से त्रिणुक की उत्पत्ति मान लीजिए, या फिर तीन से अधिक द्वेणुक से मान लीजिए, ऐसा क्यों नहीं मानते हैं। उसका जवाब देते हैं कि त्रिणुकम तु त्रिभिः एव द्वेणुकैः आरभ्यते, त्रिणुक की का आरंभ जो है वह तीन द्वेणुक से ही होता है, क्योंकि एक से तो हो नहीं सकता, क्योंकि एकस्य अनारंभकत्वात्, एक जो त्रिणुक है वह तो एक जो द्वेणुक है वह तो अनारंभक है, क्योंकि एक में तो संयोग हो नहीं सकता। अच्छा, द्वाभ्याम आरंभे, अगर कहेंगे कि दो द्वेणुक से ही त्रिणुक का आरंभ मानना चाहिए तो वो भी नहीं मान सकते, क्योंकि द्वेणुक जो होता है उसमें महत्व परिमाण नहीं होता। मैंने बताया था ना कि त्रिणुक जो है वह प्रत्यक्ष होता है, द्वेणुक प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष होने के लिए कई कारण है, उसमें एक महत्व भी कारण होता है, माने जिसका परिमाण महान हो, माने बड़ा हो, उसी का प्रत्यक्ष होता है। तो अगर हम दो द्वेणुक से आरंभ मानेंगे ना, तो फिर क्या होगा, कार्य गुण महत्व अनुपपत्ति प्रसंगात, तो दो द्वेणुक से अगर आरंभ होगा तो दो द्वेणुकों में जैसे महत्व परिमाण न होने से वो अप्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही दो द्वेणुकों से बनने वाला जो त्रिणुक होगा उसमें भी महत्व परिमाण नहीं रहेगा और उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। इसीलिए दो द्वेणुक से भी त्रिणुक का आरंभ हम नहीं मानेंगे। तो किससे मानेंगे, तीन द्वेणुक से आरंभ मानेंगे। अब जब तीन द्वेणुक से आरंभ मानते हैं तो क्या होता है, तीन द्वेणुक का मतलब हो गया छह परमाणु, और छह परमाणु जब एकत्रित हो जाते हैं वही होता है त्रिणुक, और उस वह जो है उसमें महत्व परिमाण माना जाता है और वह प्रत्यक्ष योग्य होता है। आगे कहते हैं कार्य ही महत्वम, कि कार्य में जो महत्व परिमाण आता है वह महत्व परिमाण कैसे आता है, दो कारणों से आता है, एक तो कारण महत्वात्, या तो कारण में महत्व हो तो आता है कार्य में महत्व, अथवा कारण में बहुत्व हो तो फिर आता है कार्य में महत्व। तो अगर हम द्वेणुक से दो द्वेणुक से आरंभ मानेंगे तो जो द्वेणुक जो रूपी जो कारण है उसमें तो महत्व परिमाण है नहीं, तो फिर उससे जो बना हुआ कार्य है त्रिणुक उसमें महत्व परिमाण नहीं आ पाएगा। हाँ, दूसरा जो कारण है, कारण बहुत्वाद वा, जब कारण बहुत हो तो फिर कार्य में महत्व परिमाण आता है। तो तीन द्वेणुक से अगर हम आरंभ मानते हैं त्रिणुक का तो फिर वहां पर कारण बहुत होता है, बहुत होने के लिए दो से ज्यादा होना चाहिए ना, तो कारण बहुत हो गया माने तीन द्वेणुक हो गया, तीन द्वेणुक होने से क्या होगा कि कार्य में महत्व परिमाण आ जाएगा और उसका भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। तत्र प्रथमस्य असंभवात, अब ये जो दो कारण बताए इन्होंने कि कार्य में महत्व परिमाण कैसे होता है जिससे कि प्रत्यक्ष योग्यता आती है, तो उसमें एक तो कहा था कि या तो कारण में महत्व परिमाण हो अथवा कारण में बहुत हो। उसमें पहला जो ये है कारण में महत्व होना, यह तो असंभव है यहाँ पर, क्योंकि कारण यहाँ पर कौन है? जनुक का, जनुक कारण है, वह जनुक में महत्व नहीं है, महत्व परिमाण नहीं है, इसलिए उसके कारण जो है कार्य त्रनुक में महत्व परिमाण नहीं आएगा। तो किससे आएगा? तो चरमम एसितव्यम, चरम जो बताया कारण बहुत्व, तो उस कारण बहुत्व से जो है कार्य त्रनुक में महत्व आएगा, महत्व परिमाण आएगा। न च चतुरादि कल्पनायाम प्रमाणम अस्ति। तो कहा कि अच्छा ठीक है, आपने ये तो स्वीकार किया ना कि कारण में अगर बहुत्व हो तो कार्य में महत्व परिमाण आता है, तो ठीक है, आपने जो तीन द्वनुकों से माना त्रनुक की उत्पत्ति, वो तीन के बदले चार से मान लीजिए कि चार द्वनुक से त्रनुक बनता है या पांच द्वनुक से त्रनुक बनता है, तो इसके लिए जवाब देते हैं कि न चतुरादि कल्पनायाम प्रमाणम अस्ति, कि चार पांच द्वनुकों से त्रनुक बना है इसमें कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि आपको क्या चाहिए? महत्व परिमाण ही चाहिए ना प्रत्यक्षता के लिए, तो वह प्रत्यक्षता या वह महत्व परिमाण जो है वह त्रिभिः एव महत्वारंभारंभ उपपत्ते है, तीन ध्वनिकों से ही जब महत्व का आरंभ हो जाता है तो फिर चार से महत्व का, चार से त्रनु की उत्पत्ति मानना या पांच से त्रनु की उत्पत्ति मानना इसमें कोई प्रमाण है क्या? हाँ, तीन से अगर संभव नहीं होता महत्व परिमाण आना तो फिर हम चार से मान सकते थे या पांच से मान सकते थे, जब तीन मानने से ही काम चल रहा है तो चार पांच मानने में कोई प्रमाण नहीं है। वही कहा कि न चतुरादि कल्पनायाम प्रमाणम अस्ति, चार पांच द्वनिकों से उत्पत्ति मानना जो है उसमें प्रमाण नहीं है, क्योंकि त्रिभिः एव महत्वारंभोपपत्ते, तीन से ही जो है महत्व के आरंभ की उपपत्ति हो जा रही है, तो फिर चार पांच मानने की क्या आवश्यकता है। इस तरह से यहाँ पर जो परमाणु की के अस्तित्व की सिद्धि की गई थी उसमें जो कुछ सवाल थे उन सवालों का जो है यहाँ पर जवाब दिया गया कि क्यों जो है दो ही परमाणुओं से द्वनुक माना जाता है, क्यों जो है तीन द्वनुक से त्रनुक माना जाता है, उससे कम संख्या या उससे ज़्यादा संख्या से क्यों नहीं माना जाता, इसी तरह से परमाणु को जो है आरब्ध क्यों नहीं माना जाता, अनारब्ध क्यों माना जाता है, इन सब प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया गया। इस प्रकार परमाणु का विचार यहाँ पर संपन्न होता है। अब अगला जो द्रव्य है पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार हो गए हैं, अब आकाश की बारी है, तो आकाश नाम के द्रव्य की के बारे में आगे निरूपण किया जाएगा अगले पाठ में।